ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया है कि तुम बच्चे ही ऑल राउंड पार्ट बजाते हो, तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, पार्वतियां हो और द्रौपदियां हो। बाबा ने कहा कि कई बच्चे ऐसे हैं कभी कभी ड्रामा पर बैठ जाते हैं। बच्चों को ड्रामा पर नहीं बैठना है, अगर ड्रामा की बात पर लेकर के बैठ जाएंगे तो क्या होगा, भूख मरेंगे। पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, बाबा ने कहा पुरुषार्थ ऐसा करना है चाहे तो, जैसे लौकिक में भी क्या होता है, कोई ट्रेन या कोई थिएटर में जाते हैं, कोई फर्स्ट क्लास की बुकिंग कराते हैं, कोई सेकंड क्लास की कराते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों के ऊपर है पुरुषार्थ करके, चाहे तो सूर्यवंशी बनो चाहे तो चंद्रवंशी बनो, लेकिन बाबा तो चाहेंगे कि सब बच्चे जो हैं सूर्यवंशी बने, लेकिन बच्चों को पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो लौकिक में भी कोई बच्चा बीमार होता है तो बाप को चिंता हो जाती है, ओना हो जाता है, ये बीमार है इसका इलाज कराएगा। तो बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे काफी समय से कैसे उनको मर्ज लग गया है, बीमारी लग गई है पांच विकारों की, मैं उनकी बीमारी से शफा दिलाने के लिए, बीमारी से छुड़ाने के लिए मैं आता हूँ। लेकिन बच्चे पूछते बाबा ये बीमारी लगी क्यों, बाबा कहते हैं पांच विकारों के कारण ये बीमारी लगी है और बाप आकर के इससे छुड़ाते हैं। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की डेट है 11 दिसंबर 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे बाप का मददगार बन इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाना है, पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। मीठे बच्चे बाप का मददगार बन इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाना है, पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व कराना है। आज का प्रश्न है, बाप की फर्ज अदाई क्या है, कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है, बाप की फर्ज अदाई क्या है और कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए बाप को संगम युग पर आना पड़ता है। इसका उत्तर है, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना। कौन सी फर्ज अदाई बाबा करते हैं, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना। दूसरा, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, ये बाप की फर्ज अदाई है जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज मिटाने, मर्ज मीन्स बीमारी, नहीं मर्ज भी लग जाता है, ये बीमारी लग गई। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने, मर्ज मिटाने, दुख छुड़ाने, माया के फंदे से निकालने और सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति, भोलेनाथ शिव भगवान वाच्य ब्रह्म मुख कमल से बाप कहते हैं, ये वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है ना। इस कल्प वृक्ष अथवा तो बाबा कहते हैं, इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का रास बच्चों को समझा रहा हूँ। गीत में भी इनकी महिमा है ना, आकर है ना, गीत है भोलेनाथ से निराला, उसमें गीत में है। तो बाबा कहते गीत में भी क्या है कि किसकी महिमा है, शिव बाबा की। गीत में इनकी महिमा है, शिव बाबा का जन्म भी यहाँ है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ भारत में। मनुष्य ये नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर की तो बात ही नहीं है। अब बाबा कहते मैं द्वापर में थोड़ी आता हूँ, द्वापर की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले मैंने आकर के ये ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है, ये झाड़ ऐसा है, इतना सुंदर झाड़ दुनिया में कोई बना नहीं सकता है। शिव बाबा ने संदेशी के द्वारा ये झाड़ बनवाया और शिव बाबा ही सारे डायरेक्शन देते थे। और आप सबको मालूम है कि पहली पहली बार जो फॉरेन में डेलीगेशन गया था, दादी प्रकाश मणि और रतमहन दादी और दादा आनंद किशोर गए थे, उस समय बाबा ने इनको ये झाड़ का चित्र साथ में दिया था। उस चित्र को देख करके वो लोग तो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए तो वहाँ के लोगों ने कितने हजारों की संख्या में ये झाड़ का चित्र बनवा करके दिया। उन्होंने कहा ये ऐसा चित्र कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता है। तो बाबा की इस झाड़ में ही सारा ज्ञान है, इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो, सत्युग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था, त्रेता में राम सीता का है। बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे में कब से हैं? अब बच्चे भी तो बाबा से रूहान करते हैं, बच्चे भी बाबा को कहेंगे, बाबा हम ऐसे क्यों दुखी हो गए? बाबा ने कहा तुमने ही तो किया सब कुछ, बाबा ने थोड़ी कुछ किया है। फिर भी बाबा आज रहम दिल होकर के बच्चों को बता रहे हैं। बच्चे पूछते हैं बाबा हम माया के फंदे में कब फंसे? बाबा कहते द्वापर से नंबर वार फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं। तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने। 5000 वर्ष के बाद आते हैं, संगम पर आते हैं, अपना फर्ज क्या निभाते हैं? बच्चों को अपना बनाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं, विश्व की बादशाही देते हैं। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष के बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं, सभी दुखी हैं, उसमें भी खास भारतवासी। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता। सुखी तो क्या, स्वर्ग कितना ऊंच बना देता है, और भारत पर ही सारा खेल है, वो भी ड्रामा के अंदर है। तो बाबा कहते ड्रामा अनुसार मैं भारत को ही सुखी बनाता हूँ। बाप का फोर्स होता है, बच्चे बीमार पड़े तो उसकी दवा दरमल करना, ये है बहुत बड़ी बीमारी। वैसे भी लौकिक में देखते बच्चा जब बीमार होगा फटाफट उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे कि इसकी दवा करे, इसका क्या कारण है। तो बाबा कहते ये भी तो बाबा अपनी फर्ज अदाई कर रहे हैं। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना, ये है बहुत बड़ी बीमारी। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये कब से शुरू हुए? पहले बच्चे पूछते बाबा हम बीमार क्यों पड़े, फिर बाबा से पूछते बाबा ये पांच विकार कब से शुरू हुए? बाबा कहते द्वापर से रावण की बात समझानी है, रावण को कोई देखा नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है और बाप को भी बुद्धि से समझा जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है, आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप शेप में आत्मा ही आती है, जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो, दुनिया में भी कोई ऐसे थोड़ी कहेगा कि मैं परमात्मा सर्वज्ञ, समझते ना, जैसे परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो उसके लिए पॉइंट इतनी अच्छी है, कभी कोई नहीं कहेगा मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। परमात्मा तो कभी दुखी होता ही नहीं है, वो तो दुखों से छुड़ाने वाला है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। बाप भी समझाते हैं, मेरा भी पाठ है, कलप कलप संगम पर आकर मैं पाठ बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वह अब दुख में पड़े हैं, इसलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार ये बातें है ही नहीं। कच्छ अवतारो मच्छ अवतारो, अब मच्छ क्या बोलेगा, कच्छ क्या बोलेगा, बाबा की तो ऐसी सी बातें लिख दी है, बाकी ये बातें है ही नहीं। बाकी कच्छ मच्छ अवतार ये बातें है नहीं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियो को मारा, ये सब है दंत कथा। परशुराम की तो क्या क्या कहानियां सुनाती, इतना क्रोधित इतना क्रोधित, कितना भी देखो क्या बाबा कहते ये भी तो इतना बड़ा विकार है, क्रोध भी तो विकार है ना, तो ऐसी ऐसी कहानियां बना दी हैं। परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियो को मारा, ये सब है दंत कथाएं। तो अब बाप समझाते हैं मुझे याद करो, ये है जगत अम्बा और जगत पिता, मदर एंड फादर कंट्री कहते हैं ना, दुनिया में जाएंगे कहीं कुछ नहीं ऐसे नहीं कहते मदर फादर, यहाँ पर भारत के अंदर है तमेव मातर पिता, तू ही माता है तू ही पिता है, या मदर कंट्री भी है साथ साथ फादर को भी मानते हैं। दुनिया में तो जाओ ना कहीं कहीं देशों में ऐसे भगवान को केवल फादर मानते हैं, मदर नहीं मानते, केवल मदर किसी को मानेंगे। उसको पूछा एक आध को क्यों आप ऐसे कहते, फादर ने मैं बहुत दुख किया, आई डोंट लाइक फादर। अरे वह दुखी हुए तो इसलिए उसको याद नहीं करते। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर माँ पिता कह करके परमात्मा को पुकारते हैं। यह है जगत अम्बा और जगत पिता, मदर एंड फादर कंट्री कहते हैं। भारतवासी याद भी, बाबा ने कहा कि देखो भारतवासी किसको याद करते हैं, भारतवासी याद करते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे तो बरोबर बहुत मिल रहे हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा की कृपा से बाबा आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद में पुरुषार्थ कराते हैं, तो बाबा की पुरुषार्थ से बाबा हमें सिखाते हैं तो कितने सुख मिलते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसे बायोस्कोप में जाते हैं फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते, उस समय पहले फिल्म बनती थी तो लोग जाते थे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास होता था, कोई फर्स्ट क्लास कोई सेकंड क्लास कराता था। तो बाबा कहते जैसे बायोस्कोप में जाते हैं फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना, बाप भी कहते हैं, अब किस में रिजर्वेशन कराना है, बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी बनो चाहे, अब क्या बोलेंगे, चंद्रवंशी के लिए बोलेंगे कोई, जो कहेंगे चंद्रवंशी वो तो आना ही है ना, पूछना क्या है, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी आना ही है। बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ, जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं, रावण ने सबको बहुत दुख दिया है। कोई भी मनुष्य की गति सदगति कर न सके, ये है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं तो यहाँ पर ही पुनर्जन्म लेते। जब तक ये ड्रामा चल रहा है कोई भी ऊपर नहीं जा सकता है। कोई भी शरीर लेगा तो पुनर्जन्म तो यहीं लेंगे ना। तो बाबा कहते हैं गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं तो पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं, तो फिर ये औरों की सदगति क्या करेंगे? क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर के पतित सृष्टि को पावन बना सकेंगे? अभी देखो कितने गुरु हैं, कितने संत महात्माएं हैं, वो भी पुरुषार्थ करते रहते हैं कि कितना अशांति है, कितना लड़ाई झगड़ा है, दूर करें दूर करें, वो हो ही नहीं पा रहा। अब बीच बीच में अपनी तरफ से भी कहाँ कहाँ धर्म सम्मेलन रखते रहते हैं, सब आते हैं, तो उनको लगता है कि कैसे शिव बाबा ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा ये कार्य करा रहे, तो हमको भी सहयोग देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं क्या इतने सभी गुरु मिलकर के पति सृष्टि को पावन बनाएंगे? गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, ये माताएं इस आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाती हैं। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं, वह है तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं। वो कहेंगे ब्रह्म अस्मि, वो तत्व को याद करते हैं। ब्रह्म में जो रहने वाला शिव बाबा है उसका परिचय नहीं है तो ब्रह्म को याद करते हैं, घर को ही अपना समझ लिया है। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते यही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाप कहते हैं ये तो ब्रह्म है, ब्रह्म भगवान नहीं है, ये तो ब्रह्म है। ब्रह्मांड भी तो आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, निराकारी झाड़ भी दिखाया हुआ है, हर एक का अपना अपना सेक्शन है। ये ड्रामा भी ऐसा फिक्स है कि जैसे आत्माएं जाएंगी वो हर एक ड्रामा अनुसार अपने अपने सेक्शन में जाएंगी, कोई इधर से उधर नहीं होती। तो बाबा कहते हर एक का अपना अपना सेक्शन है। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। आज की नई पॉइंट बाबा बता रहे हैं, झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। फिर वृद्धि होती है, मुख्य है चार धर्म, तो हिसाब करना चाहिए कि कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए, ऐसी तो नहीं कि सिख लोग कोई 84, क्योंकि लास्ट में आते ना तो पूरे 84 जन्म नहीं होते हैं, जो शुरू में आएगा वो 84 जन्म लेंगे, लेकिन कई कई आत्मा और धर्मों में कन्वर्ट हो गई है तो वो फिर 84 जन्म भी ले सकती हैं। ऐसे तो नहीं कि सिख लोग 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंड ब्राह्मणों के है। तुम ब्राह्मण कौन हो? ऑलराउंडर। 84 जन्म सिर्फ तुम ब्राह्मणों के, ऑलराउंड ब्राह्मणों के हैं। बाबा ने समझाया है तुम्हारा ही ऑलराउंड पार्ट है, आज का पक्का कि हमारा ही ऑलराउंड पार्ट है। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑलराउंड पार्ट है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम ही बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्र लगाते हैं। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र बहुत सुने सुने भी हैं, पढ़े भी हैं। जिन्होंने बहुत सुने हैं पढ़े वो हाथ खड़ा करो, थोड़े ही हैं। हाँ, और बाकी तो जिन्होंने पूर्व जन्म में पढ़ लिए हो तो सब हम बैठे हैं। पूर्व जन्म में पढ़ लिए, इस जन्म में तो पढ़े ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चों की भी निशानी है, वेद शास्त्र पढ़ेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे और लास्ट में फिर बाबा मिलते हैं तो उसका राज समझाते हैं। बाबा कहते तुमने वेद शास्त्र तो बहुत पढ़े हैं, अब ये सुनो और जज करो शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट हैं या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। बाबा की टिप सारा आपके सामने है, आप खुद ही जज कर सकते हो क्या राइट है। बाप को कहते ही है ट्रुथ, मैं सच बतलाता हूँ, जिससे सतयुग बन जाता है। और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उससे नरक बन पड़ा है। बाप कहते हैं, अब दूसरी बात सुनो, बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। देखो बाबा कितना निर्माण चित्त है, क्यों कहते हैं, क्योंकि तुमने बुलाया आयो आओ। और कभी कभी बाबा कितने बच्चे ऑर्डर करते हैं, बाप आओ, बाप आपको ये काम करना है, बाबा आपको ये करना है, तो मैं भी तो गुलाम बन के करता हूँ। बाप कहते मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, भक्ति मार्ग में तुम गाते आए कि मैं गुलाम तेरा। भक्ति में हमने गाया मैं गुलाम तेरा, और बाबा यहाँ प्रैक्टिकल में आकर के बच्चों की सेवा करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो मैं गुलाम तेरा, अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। बाप को निराकारी निरअहंकारी गाया जाता, बाबा तो इतने निराहंकारी थे, बाबा हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करते थे। कई बार देखते थे, आप देखे होंगे फोटो में, बाबा कभी कभी धोबी घाट में चले जाते थे, कभी कभी बहुत बड़ा काम होता था, बाबा बच्चों को कहते थे, मम्मा को कहते थे ये काम करना है, मम्मा तो करा ही देती थी, फिर भी बहुत बड़ा काम होता था, बहुत टाइम लगेगा, बाबा खुद आकर के बैठ जाते। बाबा का बैठना, सारे बच्चे दौड़ करके आ जाते थे, जो कार्य 3 घंटे में होना है वो 1 घंटे में पूरा हो जाता था। तो बाबा हर स्थूल कार्य अपने हाथ से करते थे, और बाबा ने स्थूल कार्य करके भी बच्चों को सिखलाया कैसे ऑलराउंड बनना है। कभी कभी बाबा बच्चों को कहते थे तुमको विश्व महाराजन बनना है, अगर तुमको विश्व महाराजन बनना है ये नहीं सीखोगे तो तुम कैसे बन सकोगे, मानो तुम राजा बन जाते। और अपने सर्वेंट को किसको बोलते ये काम करना है, वो कहेगा नहीं हो सकता है, फिर तुम उसको कैसे कहोगे। तो बाबा कहते थे विश्व महाराजन बनना है तो ऑल राउंड बनना होगा, हर प्रकार की सेवा करनी है। कभी कभी बाबा को कहते थे ना बच्चे, बाबा ये कार्य मत करो, बाबा कहते क्यों, तो मुझे क्यों कहते ये कार्य मत करो, क्यों, मेरे को अपने को परफेक्ट बनाना है, सब कार्य करना है। तो बाबा ने हर कार्य बहुत बारीकी से, बहुत एक्यूरेसी से और बहुत प्रोफेशनल ढंग से बाबा कार्य करते थे। तो बाबा ने भी बच्चों को ऐसा सिखाया। तो बाबा कहते हैं बाप को निराकारी निरअहंकारी गाया जाता है, तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में है ना, अगर निगम कर भेद खेले, गीत में आता ना वो भोलेनाथ का गाते, अगम निगम के भेद खोले, बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात ही नहीं है। अगम निगम के भेद खोले मीन्स बाबा आकर के सारा राज बता देते हैं, बाकी बाबा कहते मैं कोई डमरू थोड़ी बजाता हूँ, ज्ञान सुनाता हूँ, बाकी ऐसे डमरू बाबा थोड़ी आवाज करके थोड़ी बाबा सुनाते हैं। बाबा कहते बाकी डमरू आदि की कोई बात ही नहीं है, ये तो आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्ट्रेस हो, मैं इस समय करण करावन हार हूँ, मैं इनसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करवाता हूँ, बाकी गीता में जो भी लिखा हुआ है वह है ही नहीं। अभी तो प्रैक्टिकल की बात है ना, बच्चों को ये सहज ज्ञान सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता भी हूँ, सहज ज्ञान योग सिखाता भी हूँ, फिर उनको सिखाता भी हूँ और उनसे लगवाता हूँ। कहा है ना, योग लगवाने वाले झोली भरने वाले मर्च मिटाने वाले, भगवान को क्या कहते हैं, झोली भरने वाला है, योग लगाने वाला है, पापों से मुक्त करने वाला, दुखों से दूर करने वाला है। कहते हैं ना योग लगवाने वाले झोली भरने वाले मर्च मिटाने वाले, गीता का पूरा अर्थ समझाते हैं, योग सिखलाता भी हूँ और क्या करता हूँ, बाबा के तो योग सिखलाता भी हूँ और क्या करता सिखाता भी हूँ और सिखलवाता भी हूँ कि तुमको सिखाए और तुम जाकर के दूसरों को सिखाओ। योग सिखाता भी हूँ और सिखलाता भी हूँ, सिखलावाता भी हूँ कि दूसरों से तुम लोग जाके सिखलाओ। योग सिखाता भी हूँ और सिखलवाता भी हूँ। बच्चे योग सीखकर फिर औरों को सिखलाते हैं, कहते हैं योग से हमारी ज्योत जगाने वाले। ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाता रहे। कल भी बाबा ने कहा ना अच्छे अच्छे गीत रख दो और गीत सुनने से रिफ्रेश हो जाएंगे। बाबा भी कहते अच्छे अच्छे गीत सुनोगे तो ऐसे ऐसे गीत सुनोगे तो सारा ज्ञान बुद्धि में घूमता रहेगा। ऐसे ऐसे गीत भी कोई घर में बैठ सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्कर लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। जब परमात्मा कहते भगवान कहते हैं तो बहुत दूर का समझते हैं, बहुत दूर, और जब कहते बाबा है हमारा पिता है तब तो बहुत क्लोजनेस का अनुभव होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता है, बाबा माना ही वर्षा। पिता कहेंगे तो पिता से क्या होगा, वर्षा मिलता है। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो, इसे ही क्या कहते हैं शंख ध्वनि कहा जाता है। अब शंख ध्वनि क्या है, ज्ञान सुनना और ज्ञान औरों को सुनाना। कोई शंख ध्वनि करते ना तो वो खुद भी करते हैं दूसरों को भी सिखाते हैं। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मणों की शंख ध्वनि क्या है, ज्ञान सुनना औरों को सुनाना। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हैं, इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है, बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण। कौन है, एक तो रूहानी ब्राह्मण है लेकिन उसमें भी तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको ये अमर कथा सुना रहा हूं। तुम सब द्रौपदियां हो। कौन कौन सी बात, सच्चे रूहानी ब्राह्मण, पार्वतियां, तुम सब द्रौपदियां हो। यहाँ कोई लंगन नहीं होते हैं, कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे। जब सतयुग की बात आती है कहते ना योग बल से पैदा होंगे, तो वो कहते कैसे होंगे, उनको पता ही नहीं है कि योग बल से क्या हो सकता है। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे, अरे ये है ही निराकारी निर्विकारी दुनिया, तो विकार की बात कैसे हो सकती है ही सतयुगी निर्विकारी दुनिया। तो बाबा की तुमको बताओ, अरे ये तो है ही निर्विकारी दुनिया, तो फिर विकार की बात कैसे हो सकती है, तुम समझ नहीं सकेंगे। फिर उनको बता दो, नहीं सुनते तो ना सुनो, समझ नहीं सकेंगे, तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे परंतु ये तो शास्त्रों की बातें, पहले पहले शुरू शुरू में आते थे बहुत बहस करते थे आर्ग्यू करते थे। बाबा कहते वो करेंगे तो उनको बोल दो, तुम आर्ग्यू करेंगे तो शास्त्रों की बातें, हम कुछ शास्त्रों की बातें थोड़ी सुना रहे, हम तो जो रियल बातें वो आपको सुना रहे। तो बाबा कहते हैं तुम तो आर्ग्यू करेंगे परंतु ये तो शास्त्रों की बातें है ना, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया और ये है विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको बहुत दुखी करेगी। बाबा को पता है बाबा के बच्चे बन जाते हैं फिर भी माया क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। बाबा कहते मैं जानता हूँ ड्रामा अनुसार माया तुमको बहुत दुखी करेगी। मैं कलप कलप अपना फर्ज पालन करने आता हूँ, जानते हैं कलह पहले वाले कौन आएंगे? बाबा कहते देखो कलह पहले वाले सिक्की लदे बच्चे ही मेरे पास आए। तो कौन हो गए? आप सब सिक्की लदे बच्चे हो। जानते हैं कलह पहले वाले सिक्की लदे ही आकर अपना वर्षा लेंगे। देखो ब्राह्मणों की भाषा कितनी अच्छी है बाबा की, कि यहाँ पर दुनिया में कोई किसी को सिक्की लदा नहीं कहेगा, और यहाँ बाबा हर बच्चे को कहेंगे मेरा सिक्की लदा बच्चा है, मेरा लाडला बच्चा है, मेरा नूरे रतन है। कितनी महिमा करते, कितना प्यार करते हैं। जानती है कलह पहले वाले सिक्की लदे ही आकर अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं, आते हैं पता पड़ जाता है ये ब्राह्मण कुल की आत्मा है, ये वर्षा पाने वाली है, ये आत्मा आगे जाने वाली है। आसार भी दिखाते हैं, ये वही महाभारत लड़ाई है, तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है, ना असुरों की व देवताओं की लड़ाई हुई। बाबा कहते असुर देवता है, अभी तो वैसे ही सारे लड़ते ही रहते हैं, ना असुरों की ना देवताओं की लड़ाई हुई है। वहां तो माया ही नहीं जा सकती, सचयुग में माया बिल्कुल नहीं जा सकती, वहां तो माया ही नहीं है जो लड़ाए। आधा कल्प ना कोई लड़ाई, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख अशांति। अरे आज बाबा देखो कहता अरे कोई नहीं समझता, कहते ना अरे तुम समझते क्यों नहीं। आज बाबा भी बच्चों को क्या कह रहे, अरे वहां तो सदैव सुख है, बाहर ही बाहर रहती है, और क्या नहीं होगा, वहां तो हॉस्पिटल ही नहीं होते, इतना सुख है, इतनी बाहर है, इतनी प्राप्ति है, सब कुछ स्वस्थ है, हॉस्पिटल आदि की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो जरूरत है, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल से आदि से कितनी सेवाएं लेते हैं, तन को भी स्वस्थ रखना है। संगम युग के अंदर बाबा कहते तन भी बहुत वैल्यूएबल है, इसका भी ध्यान देना है। दवा दुआ से क्या करना है, तन को स्वस्थ रखेंगे तब तक, जब तक तन है तब तक सब कुछ बाबा से वरदान लेते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे। तो संगम युग में हॉस्पिटल का अपना महत्व, सतयुग में हॉस्पिटल का महत्व नहीं है, वहाँ तो है ही नहीं। तो सतयुग में तो हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है, सबके सब हेल्दी हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ ना कोई भी बीमारी, ना दुख अशांति, अरे वहाँ तो सदैव सुख है, बाहर ही बाहर रहती है, हॉस्पिटल आदि भी नहीं होती है। बाकी क्या होता है, बाकी क्या होगा बताओ, बाकी स्कूल में पढ़ना होता है, जाएंगे ना स्कूल में पढ़ने, वहाँ के स्कूल इतने रॉयल, इतने अच्छे होंगे, स्कूल में पढ़ाने वाला भी इतना अच्छा होगा, वो ज्यादा पढ़ाएगा नहीं कि इतना पढ़ना है। आजकल पढ़ाई में देखो ना कितना वो पढ़ते हैं, कितना उनकी किताबें होती, कितनी मेहनत करते हैं, वहां तो इशारे से ही समझ जाएंगे, पहले से समझदार होते हैं, इशारे की बात है। लेकिन जैसे एक नियम अनुसार उनको जाना है स्कूल में, जाएंगे और बहुत इंटेलिजेंट रहेंगे, और मास्टर भी खुश रहेगा और स्टूडेंट भी खुश रहेंगे। कभी कभी क्या है, मनोहर दादी जी ना वो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती थी, तो सब दादियां दीदियां बैठती थी, चिट चैट करते थे, तो मनोहर दादी को कहते थे हंसते, मनोहर दादी के तुम ही श्री कृष्ण की टीचर बनेंगे, क्योंकि मनोहर दादी ज्ञान बहुत अच्छी तरह से ऐसे करके सुनाती थी, तो उनको हंसाते थे। दादी भी कहती थी, दीदी भी कहती थी मनोहर दादी को कि तुम श्री कृष्ण की टीचर बनेंगे। अब टीचर कौन बनेगा, वो तो ड्रामा में जिसका पार्ट हो, तो आपस में रूढ़िवाद भी करते थे। तो यहाँ पर भी बाबा क्या कहते हैं, सतयुग में पढ़ाई होगी, स्कूल होगा, लेकिन हॉस्पिटल नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम हर एक यहाँ से वर्षा ले रहे हो, यहाँ से पढ़ के जाएंगे, वहां पर नाम मात्र पढ़ेंगे। मनुष्य पढ़ाई से अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है ना, कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो, तो कहा हम अपनी तकदीर का खाते। ये कहानी सुनिए ना, एक राजा की चार बच्चियां थी, और तीनों कहती थी अपने पिता को हम आपका ही खाते, एक ही छोटी वाली हमेशा कहती थी मैं अपनी तकदीर का खाती हूँ। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसको बोला जंगल में फेंक के आओ, जंगल में भेज दिया। वहां जैसे गई उसको राजकुमार मिल गया और राजकुमार अपनी राजधानी में ले गया। तो फिर बताया अपने बाप को, बताओ मैं किसका खाती हूँ, तो अपनी तकदीर का खाते है ना। तो बाबा कहते हम कैसे अपनी तकदीर का खाते, यहाँ से पुरुषार्थ करके जाते वो हमें प्रारब्ध मिलती है। मनुष्य अपनी पढ़ाई से अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है ना, कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो, तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती हूँ, वह होती है हद की तकदीर। अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो, तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। ये है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कॉन्ट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है देखो। जिन्होंने कल पहले राज्य भाग्य लिया होगा वही अब ऐसे लेंगे। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूख मरेंगे। अब किसको बहुत कुछ मिलने वाला है कि अगर ड्रामा में होगा तब मिलेगा। अरे तुम जाओगे, कदम उठाओगे, पुरुषार्थ करोगे। बाबा भी कहते ना खाना बहुत अच्छा मिला है लेकिन हाथ से उठा के मुख में तो खुद डालोगे ना। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, अगर ड्रामा पर निर्भर रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूख मरेंगे। ये ड्रामा का राज भी पूरा समझना। कई ऐसे होते हैं पुरुषार्थ नहीं करते, हर बात को ड्रामा पे छोड़ देते। बाबा कहते ड्रामा कितना रहस्य से भरा हुआ है, इसका राज भी अच्छी तरह समझना है। ये ड्रामा का राज भी पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु और कोई ने कितनी आयु लिख दी है, अनेका अनेक मत मतांतर हैं। कोई फिर कहते हैं हम तो सदा सुखी है ही। अरे तुम कभी बीमार नहीं पड़ते? आज बाबा देखो जैसे किसको सीधा सीधा बोलते, अरे तुम सदा सुखी हो ठीक है, घर में कले क्लेश होता है, घर में बच्चे बीमार होते हैं। बाबा कहते अच्छा तुम सुखी हो, धन संपत्ति महल मालिया सब कुछ है, लेकिन बीमारी तो आ जाती है, क्या तुम कभी बीमार नहीं पड़ते तो इसको सुख कहेंगे? तो बाबा कहते हैं कोई फिर कहते हम तो सदा सुखी हैं। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो? वह तो कहते रोग आदि तो शरीर को होता है। अब वो भी बहुत होशियार है, जवाब देते हैं अरे रोग आदि तो शरीर को लगेगा लेकिन रोग का दुख तो होता है ना। वह रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है। अरे चोट लगती है तो दुख तो आत्मा को होता है ना। बाबा कितना अच्छी रीति समझाए, चोट लगेगी शरीर थोड़ी रोएगा, आत्मा को दुख होता है ना। अरे चोट लगती है तो दुख तो आत्मा को होता है ना, ये बड़ी समझने की बातें हैं। आत्मा निर्लेप है ऐसे नहीं, ये स्कूल है एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, एम एंड ऑब्जेक्ट भी एक ही है, नरसे नारायण बनने की। जो ना पास होंगे वह चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, जब क्षत्रिय है तो देवता नहीं, जब वैश्य है तो ना देवता ना क्षत्रिय। तो बाबा कहते हैं जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, और जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। ये सब समझने की बातें हैं। माताओं के लिए तो अति सहज है। आज बाबा ने माताओं को एक जिम्मेवारी दे दी, क्या? गोवर्धन पर्वत को उठाने की और आयरन एज पहाड़ को गोल्डन एज बनाने की। फिर बाबा कहते माताएं तो बहुत समझ जाती हैं, माताओं के लिए अति सहज है, एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे। यहाँ जितने बैठे हैं ना इनमें से कईयों को अभी तक यही रहता, हम देर से क्यों आए, हमने बाबा को क्यों नहीं देखा, आप लोगों ने देखा, हमारा क्यों ड्रामा में ऐसा पार्ट था। बाबा कहते नहीं, अभी नए आने वाले भी बहुत तीखे जा सकते हैं और कई जा भी रहे हैं, तो जिसको दौड़ी लगानी लगाओ और जाओ। तो बाबा कहते हैं लेकिन अभी तो नए भी तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में है, बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं, कहेंगे इनमें काम का भूत है, बाकी रावण का कोई बुत या शरीर तो है ही नहीं। रावण का बुत बनाते हैं, करते रहते, बाबा कहते ऐसा कोई होता नहीं है, शरीर है नहीं, वो तो विकारों की बात है, बाकी रावण का कोई बुत व शरीर है नहीं। अच्छा, सभी बातों की सैक्रीन है मन मना भव। सब कुछ समझा करके लास्ट में बाबा कहते हैं सभी बातों की सैक्रीन है मन मना भव। कहते हैं मुझे याद करो जिस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सम्मुख तुमको पढ़ा रहा हूँ, कितना बड़ा भाग्य बाबा खुद बैठ के पढ़ाए, सन्मुख बैठ के पढ़ाता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे मैं तो सन्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कितना नशा रहना चाहिए। कलप कलप अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। तुम बच्चों ने पुकारा, चिल्लाया, कहा आओ मैं आता हूँ, कलप कलप आकर के अपने जो फर्ज अदाई है वो पूरा करता हूँ। कलप कलप अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। परलौकिक बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ, जो मेरी जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, जो मेरा फर्ज है वो करना। तो बाबा कहते परलौकिक बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ तुम बच्चों की मदद से। देखो बाबा अपना फर्ज निभाते हैं और बच्चों को भी साथ लेते हैं और बच्चों का भी भाग्य बनाते हैं। बच्चों की मदद क्यों लेते, ताकि बच्चे ही जाके विश्व राज्य अधिकारी बने। मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे ना। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा है, ब्रह्मा की मुख वंशावली तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणिया भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं हम ब्राह्मण कुल को बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना। बाबा पक्का कराते हैं कि ब्राह्मण जीवन की जो मर्यादा है उसका पूरी रीति से पालन करना है, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है। बाप कहते हैं कि इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियां हैं। मनुष्य कहते हैं ये कैसे होगा, दुनिया वाले तो पता नहीं शुरू में इतनी बहस करते थे, आजकल तो वो नहीं करते हैं। आजकल तो देखो कितने बाबा के बच्चे कितनी धारणाओं पर चल रहे हैं, अभी अलग अलग सेंटर्स पर प्रोग्राम रखते रहते हैं, जो पवित्र युगल है उनका रखते हैं, ऐसे प्रोग्राम में महात्माओं को साधु संतों को बुलाते हैं, वो भी उनको देख करके कितना खुश होते हैं, तो उनको बताते कैसे बाबा ने इतनी ज्ञान की शक्ति दी है, जो अपने जीवन को कितना ऊंच बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं पवित्र रहने की युक्तियां हैं। मनुष्य कहते ये कैसे होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता, इकट्ठे रहें और आग न लगे। फिर बाबा ने क्या युक्ति बताई, बाबा कहते बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी भी आग लग नहीं सकती, परंतु जबकि दोनों मन मना भव रहे। शुरू से भी देखा कई बाबा के बच्चे पवित्र युगल होकर के रहे। एक बार यहाँ दादी ने भी मधुबन के अंदर पवित्र युगलों का विशेष कार्यक्रम रखा था, जिसके लिए महात्माओं को भी बुलाया था, तो उनको देख करके इतनी खुशी होती थी कि बाबा ने ये जो ज्ञान और युक्ति बताई है कितनी अच्छी है। तो बाबा कहते बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग लग नहीं सकती, परंतु जबकि दोनों मन मना भव रहे। शिव बाबा को याद करें, अपने को ब्राह्मण समझे। कितनी अच्छी युक्ति कि मन मना भव रहे, शिव बाबा को याद करें, अपनी मर्यादा का रहे कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, अपने को ब्राह्मण समझे। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने के कारण हंगामा मचाते, शुरू में बहुत हंगामा होता था पवित्रता के कारण। तो बाबा कहते वो तो नहीं समझते ना, तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने के कारण हंगामा मचाते हैं, ये गालियां आदि भी खानी पड़ती हैं। शुरू में बहुत गालियां देते थे, श्री कृष्ण को थोड़ी गाली कोई दे सकते हैं। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो क्या होगा, मालूम पड़ जाए कि श्री कृष्ण भारत में आया है या किसी और देश में आएगा तो क्या होगा, सब लोग एरोप्लेन लेके कहां से कहां, आजकल तो साधन है, वहां पहुंच जाए हंगामा ही कर दें। बाबा कहते श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भाग आए, भीड़ मच जाए, पता पड़े तो वहां तो सारी दुनिया ही पहुंच जाएगी, भारत में पता नहीं क्या हो जाए। श्री कृष्ण ऐसे नहीं आएगा, अभी भी स्थापना में जब आएगा तो गुप्त रीति से आएगा, तब तक तो विनाश हो, चारों तो हालात भी बहुत खराब होंगे। तो बाबा कहते अगर वो सीधा ऐसे आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भाग आए, भीड़ मच जाए, भारत में पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, जो जिस दिन मुरली चढ़ी उस दिन गुरुवार है, तो बाबा कह रहे अच्छा आज भोग है, ये है पियर घर और वह है ससुर घर। ससुर घर कौन सा, सतयुग है, पियर घर है संगम युग। संगम पर मुलाकात होती है, कोई कोई इनको जादू समझते। शुरू में क्या हुआ, जब यज्ञ की स्थापना हुई और जब यज्ञ भारत में ट्रांसफर हुआ उस समय भी सेंटर्स पर बहुत भाई बहने फटाफट ध्यान में चले जाते थे, कोई सेमी ट्रांस में होते थे, बाहर वाले देखते थे वो ध्यान में चले गए तो कहते तो जादू है, तो उसको जादू समझते थे। पर ये तो बाबा का ही पाठ था, बाबा ही कराते थे। तो बाबा कहते हैं संगम पर ही मुलाकात होती है, कोई कोई इनको जादू समझते हैं। बाबा ने समझाया है ये सब साक्षात्कार क्या है, भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं, इसमें संशय बुद्धि नहीं होना है, ये भी रस्म रिवाज है साक्षात्कार का भी। द्वापर में भी रस्म रिवाज था, थोड़ा थोड़ा था, स्टार्टिंग में यज्ञ की स्टार्टिंग में तो बहुत हुआ, और अभी तो बाबा ने सब हल्का कर दिया है, अब तो बाबा ने बहुत ज्ञान दे दिया है। बाबा कहते ज्ञान से अनुभव करो, तो बाबा कहते ये रस्म रिवाज है, शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए, योग में रहना तो अच्छा है। अब दोनों बातें, भोग भी लगाना है योग में भी रहना है। बाबा हमेशा कहते थे बाबा जो बच्चों को खिलाते हैं भोग लगाने से भोजन में ताकत आती है, तो भोग तो लगाना ही चाहिए। शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए, योग में रहना तो अच्छा ही है, बाप की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आप सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सांग, पहला है स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशाली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का ब्राह्मण बनना है, कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, कभी भी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। दूसरा, बाप समान निराकारी निरअहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी। जैसे बाबा अपनी फर्ज अदाई करते ना, तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी क्या करना है, बाप समान निराकारी निरअहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है, रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। वरदान, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। बाबा के साथ प्यार ये ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं। तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। तन मन धन, मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। अब हम सुनते आज का अव्यक्ति इशारा। आज की तारीख है 11 तारीख। बहुत अच्छी बात है। कई बार कई सेवा करते हैं, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा सेवा नहीं है। करते भी रहो, झगड़ते भी रहो, मन भी खुश ना रहे, खूब सेवा की लेकिन अंदर दुखी हो गए या अंदर टेंशन आ जाए, तो बाबा कहते जो सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। अगर सेवा में असंतुष्टता है तो सेवा छोड़ दो। छोड़ेंगे भी नहीं, पकड़ के भी रखेंगे, करूंगा भी मैं छोड़ूंगा भी नहीं, उसमें और टेंशन हो जाता ना। तो बाबा कहते हैं जो सेवा, अगर सेवा में असंतुष्टता है तो सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। सेवा को चेंज करो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। फिर से बढ़ते, अगर सेवा में असंतुष्टता है तो सेवा छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। सदा हद की चाहना से परे संपन्न रहो तो समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आजकल से डबल विदेशियों का नया ग्रुप आना आरंभ हो जाएगा और 15 दिसंबर को प्यारे बाबा का दिन है। ईस्टर्न के लिए सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा। दिल्ली और आगरा के तो बहुत भाई बहने पहुंच भी रहे हैं और पहुंच चुके हैं, और बाबा के बच्चे तो बाबा के घर में बाबा से मिलन आते मनाने आते ही रहते हैं। बाबा सबका प्यार से स्वागत करते हैं। अच्छा, ओम शांति।